भक्त और भगवान की परस्पर में क्या लीला होती है, भक्तों के और भगवान के बीच में कुछ अलग ही लीला होती है, प्रेम की लीला। भक्तों के हृदय का जो भाव है, उद्गार है, वो कि वो बात भगवान में ही पैदा होती है। भगवान का अपना कोई नया भाव नहीं होता। भक्तों के उद्गार भगवान के उद्गार है। भक्त के मन में जो बात आती है वही बात भगवान के मन में आती है। एक बार गोपियां आपस में इकट्ठी होकर के प्रेम की चर्चा कर रही थी। उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि हमारे शरीर का चूर्ण बना करके, चूर्ण बनाना माने जैसे चंदन का चूरा होता है, आरे से लकड़ी काटने पर जो लकड़ी के छोटे छोटे कण झड़ते हैं उसे चूरा कहते हैं, और चंदन का चूरा तो एकदम आटे के समान महीन होता है। तो गोपियां चाहती है कि हमारे शरीर का चूरा बन जाए और उस चूरे पर भगवान बैठ जाए तो हम मुग्ध हो जाए। कोई कह सकता है कि जब शरीर का चूरा ही बन जाएगा, उस शरीर में जान ही नहीं रहेगी, फिर कौन मुग्ध होगा? तो कहते हैं ये प्रश्न तुम्हारा है, गोपियों का नहीं है। वो तो प्रेम के अंदर इतनी मस्त हो जाती है कि किस में जान और किस में बेजान, दोनों से उनको कोई लेना देना नहीं, बल्कि उनका ये भाव होता है कि चूरे के अंदर भी हमारी जान कायम रहेगी। आपको मालूम होना चाहिए, एक छोटी सी कहानी है, लोकोक्ति है, कहीं ग्रंथ की भी हो तो हमको पता नहीं है। एक समय की बात है, नारद जी भगवान के परम धाम में मिलने के लिए गए। आप तो कहोगे कि भाई परम धाम तो गीता में वो बताया है कि जहां पर जाने के बाद लौटना ही नहीं होता, तो ये परम धाम क्या है? तो कहते हैं हमारा परम धाम से मतलब द्वारिकापुरी से है। भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारिका में निवास करते थे, तो दर्शन करने के लिए नारद जी पहुंच गए, और यूं ही दोनों प्रेमियों की आपस में बातें होने लगी। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, संसार में सबसे बढ़कर आपको कौन प्रिय लगता है, सबसे बढ़कर आपका कौन प्रेमी है, आपकी प्रीति सबसे बढ़कर किससे है, सबसे बढ़कर किसकी भक्ति है? तो भगवान ने नेत्र बंद किया, गदगद हो गए और नेत्रों से प्रेम के कारण जल बरसने लगा, और बड़ी मुश्किल से नारद जी को कहा, नारद जी मेरा सबसे ज्यादा प्रेम गोपियों का है और मुझमें सबसे बड़ी प्रीति गोपियों की है। नारद जी ने कहा, आप आज ऐसे पलंग पर क्यों सो रहे हैं और आंख बंद करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, क्या बात है? भगवान बोले, नारद जी हमारी अंगुली में भयंकर चोट लग गई और बहुत गहरा घाव हो गया। उसके दर्द के मारे पलंग पर लेटा हूं और कर्रा रहा हूं। नारद जी ने कहा, ओ हो महाराज, आपकी बड़ी पीड़ा हो रही है, इस घाव की पूर्ति कैसे करें? तो ना भगवान बोले कि यदि कोई मेरा प्रेमी भक्त हो और उसके शरीर के खून में पट्टी भिगो देवे और वो गीली गीली खून से सनी हुई पट्टी मेरे ऊपर लपेटी जाए तो मुझे बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज आपके प्रेमी भक्त कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कहा, नारद जी बस इतना दर्द हो रहा है कि इस समय मुझे कुछ नहीं सूझता, तुम ही विचार कर लो। नारद जी ने कहा, अच्छा महाराज आपके दर्द हो रहा है तो अभी प्रयत्न करता हूं। भगवान बोले, जरूर करो नारद जी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद नारद जी जितने भक्त कहलाते थे उनके पास गए और बोले, ओ भक्तराज, भगवान की अंगुली में चोट लग गई, कोई दवा वगैरह के रूप में एक ही बात बताई है कि किसी भगत के खून के अंदर सनी हुई पट्टी वो ला करके बांध दी जाए, तो आप अपना खून दे दे तो उसमें पट्टी भिगो करके भगवान की अंगुली पर बांध दिया जाए तो उनको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। तब उन भक्तराज ने कहा कि नारद जी बात तो आपकी ठीक है, परंतु हम तो ऐसे भक्त नहीं है कि हमारे खून की पट्टी से भगवान को आराम हो जाए, हम तो एक साधारण आदमी है। नारद जी जहां जहां गए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन किसी ने अपना खून निकालकर उसमें पट्टी को डुबाने की हां नहीं भरी। उस समय नारद जी को याद आई कि एक दिन उसी यहां भगवान ने कहा था, गोपियां मेरी सबसे बढ़कर भक्त हैं और बहुत प्रेम करती हैं। आज गोपियों की बात देखूंगा, देखें गोपियों का कितना प्रेम है। तो नारद जी आए ब्रज में, गोपियों ने नारद जी को घेर लिया। नारद जी उदास होकर बैठे हुए थे, इधर गोपियां बड़ी खुश थीं। नारद जी, क्या आप द्वारिकापुरी से आए? हाँ मैं द्वारिकापुरी से आया हूं। तो उदास क्यों है? नारद जी के आंखों से आंसू आए। तो कहा, महाराज बात तो बताओ, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, हे गोपियों, हमारे आराध्य भगवान के अंगुली में भयंकर चोट लगी है और उन्होंने कहा है कि मेरे प्रेमी भक्त की खून में सनी हुई पट्टी लाकर बांधो तो मुझे आराम मिलेगा। तो मैं सब जगह गया, कहीं मुझे किसी ने जरा सा भी खून नहीं दिया। मैं हताश होकर यहां आया हूं और इसी कारण से दुखी हूं। गोपियां बोली, अरे बाबा, भगवान की अंगुली में चोट लग गई तो क्या भक्त के खून से आराम हो जाएगा? या आराम हो सकता है? नारद जी ने कहा, ये तो भगवान की बताई हुई दवाई है। तो नारद जी, मेरे पास कोई खून रखने के लिए बर्तन नहीं है, आपके पास कोई बर्तन है क्या? मैं अभी अपने शरीर का खून बर्तन में उड़ेल दूं। नारद जी बोले, और तो मेरे पास कुछ नहीं है गोपी, मेरा कमंडल है। तो वहां गोपियों ने एक एक ने नारद जी से कमंडल छीनते हुए कहा कि नहीं, मेरा खून दूंगी, मेरा खून दूंगी। तो अपने शरीर को चीर करके कमंडल को खून से भर दिया। सब गोपियों ने कमंडल खून से भर करके दे दिया और कहा कि नारद जी, हमारे में कोई ऐसी भक्ति तो नहीं है, पर खून जरूर है। ये खून भगवान के काम आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। नारद जी खून से भरा हुआ कमंडल लेकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, ए नारद जी, इतना खून कहां से लाए, किस भक्त ने दे दिया? और इतना खून निकलने के बाद वो भक्त तो मर गया होगा ना, मैंने इतने खून के लिए थोड़ा ही कहा था, एक पट्टी खून में डूब जाए, तरतर हो जाए, उतने के लिए कहा था, इतना सारा खून का क्या करेंगे? नारद जी बोले, महाराज, मैं तो बहुत जगह भटका, पर कहीं खून मिला ही नहीं। और ब्रज में गया तो प्रत्येक गोपी ने अपने शरीर को काट काट करके खून दिया, तो थोड़ा थोड़ा खून लिया, नहीं तो गोपियां तो बेहोश हो गई थी। जिसको भी मैं मना करूं वो बेहोश हो जाए। तो मैंने कहा, अच्छा भाई, तुम भी दे दो। मैंने उनसे खून की बात कही तो फिर उन्होंने हंसते हंसते शरीर को काट करके खून दे दिया, मेरा कमंडल भर गया। भगवान ने कहा कि नारद जी, जरा मेरी अंगुली खोलो तो सही। नारद जी ने अपने हाथ से अंगुली पर से पट्टी हटाई, वहां कुछ भी नहीं, वहां कुछ लगी नहीं। भगवान ने कहा, नारद जी, अब आपकी समझ में आ गया होगा ना कि हमारी भक्ति किस में ज्यादा है। नारद जी ने कहा, महाराज, अब मेरे समझ में आ गया। आपने पहले कहा था कि गोपियों की भक्ति हमारे में ज्यादा है, तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने तो यही समझा कि बचपन से गोपियों के वहां मक्खन चाटा है, गोपियों के साथ खेले कूदे हैं, इस कारण से गोपियों का नाम ले दिया होगा। पर महाराज, जब भक्त का खून लेने के वास्ते में वहां निकला तो जहां गया सूखा जवाब मिला, किसी ने नहीं दिया ना। भगवान बोले, नारद, तू भटका क्यों रे? क्या तू मेरा भक्त नहीं था? क्या तेरे मन में ये बात नहीं सूझी कि मैं क्यों इधर उधर भटकूं? मैं तेरे पास, तू मेरे पास, तू भी तो अपना शरीर का अंग काट करके और अंगुली को खून में डुबा करके मेरे यहां लगा सकता था ना। नारद जी बोले, महाराज, ये बात तो मेरे मन में पैदा ही नहीं हुई, बस यही बात है। सबके हृदय में मेरी भक्ति तो है, पर वो पैदा नहीं हो रही है। गोपियों के पैदा हो गई और दूसरों के पैदा नहीं होती है। भक्ति सबके हृदय में है। नारद जी ने कहा, हां महाराज, अब मेरी समझ में आ गया। हम लोग झूठा भक्ति का अभिमान करते हैं। आपकी भक्त गोपियां हैं, मैं आपको और आपकी भक्ता गोपियों को हृदय से प्रणाम करता हूं। ऐसी एक बात और है। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण का अपने रनिवास में रुक्मणी आदि के सम्मुख प्रेम की बातें, प्रेम का प्रसंग चल रहा था कि कौन सी पटरानी का कैसा प्रेम है। जहाँ भगवान और भक्त होते हैं वहाँ पर प्रेम की खुली बातें होती हैं, क्योंकि वहाँ कोई कपट तो होता नहीं, कपट होता है तो वहाँ प्रेम नहीं होता, खुली बातें होती हैं। तो सब पटरानियां भगवान के पास बैठी हुई वे ही पूछ रही थी रुक्मणी आदि कि हे प्रभु, हम रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम आपके प्रति किसका है। भगवान ने देखा कि किसी का कम किसी का ज्यादा बताऊंगा तो इनके आपस में कोई दूसरा विचार न आ जाए। तो भगवान ने कहा, देखो आप सबका ही मेरे में प्रेम है, आप सब मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन रानियों ने हट कर लिया। रानियों ने पूछा कि नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रेम किसका है, कुछ किसी किसी का तो कम ज्यादा होगा ही, आप बताओ। तो भगवान थोड़ी देर चुप रहे तो कहा, महाराज बताओ ना। तो भगवान ने कहा कि देखो, सबसे ज्यादा प्रेम तो राधा जी का है। तो रानियों ने कहा, महाराज राधा जी तो यहां रहती भी नहीं है, राधा जी का यदि इतना प्रेम है तो राधा जी आपसे कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, हमने तो कभी राधा जी के दर्शन किए ही नहीं, ऐसे राधा जी के हमको भी दर्शन कराओ महाराज, क्योंकि आपका प्रेम हम राधा जी से मांगेंगी। भगवान ने कहा, ठीक है, राधा जी के दर्शन तो हो सकते हैं, थोड़ा सा मुझे मोहलत दो, थोड़ा सा समय दो, दो चार दिन के बाद मौका मिल गया। राधा जी अपनी सहेलियों के साथ गई और द्वारिका में आई। राधा जी के विषय में रानियों को पता चला, सारी रानियां राधा जी को बड़े प्रेम से घेर ली और उन सहेलियों को तो दूर कर दिया कि राधा जी की सहेलियां तो हम हैं। बड़ा उनका सत्कार किया, खातिरदारी की, आदर किया, पीने के लिए बढ़िया दूध दिया, खाने के लिए बढ़िया रसोई दी। राधा जी ने उनका उनके साथ बहुत प्रेम का व्यवहार किया, दोनों का परस्पर बड़ा प्रेम रहा, पटरानियों का और राधा जी का। भगवान की रानियों ने, पटरानियों ने राधा जी से ये नहीं कहा कि आपका भगवान कृष्ण नाम लेकर के बोले थे कि बड़ा प्रेम है हमसे भी ज्यादा, पूछा नहीं था। राधा जी अपने स्थान पर चली गई। इधर रात्रि में भगवान रुक्मणी के महल में विश्राम करने के लिए गए, तब रुक्मणी जी भगवान के चरणों को दबा रही थी तो भगवान के चरणों में फफोले देखे। तो रुक्मणी जी बोली, प्रभु आपके चरणों में फफोले कैसे हो गए। भगवान का कुछ स्वर गंभीर हो गया। भगवान ने कहा, ऐसे ही हो गए। रुक्मणी जी बोले, नहीं ऐसे तो नहीं हो सकते, यदि आपको मालूम है कि कैसे हो गए तो आप जरा बताइए। भगवान फिर और गंभीर हो गए और कहने लगे, रुक्मणी जी ऐसे ही हो गए, इसके वास्ते आप क्यों पूछती हो। रुक्मणी जी बोली, नहीं नहीं आपके चरणों पर तो हमारा भी अधिकार है, चरणों में फफोले हुए तो मैं इसका कारण जानना चाहती हूं। भगवान बोले कि रुक्मणी जी, आज दिन में राधा जी पधारी थी, उनकी खातिरी तुम लोगों ने की? बोले हाँ महाराज, हमसे जैसा भी बना वैसा किया। तो क्या आपने उनको दूध पिलाया था? कि हाँ महाराज, दूध पिलाया था और उसमें अनेक सुगंधित चीजें डाली थी, दूध खूब अच्छा बना करके पिलाया था। भगवान बोले बस रुक्मणी जी, इसी कारण से मेरे पैर में फफोले हो गए। रुक्मणी जी बोली महाराज, दूध पिलाने से आपके चरणों में फफोला हो गया? भगवान बोले हाँ, तुमने दूध में सब कुछ डाला था लेकिन दूध बहुत गर्म था। रुक्मणी जी ने कहा महाराज, दूध यदि गर्म ज्यादा था तो आपके चरणों में फफोला कैसे हुए? वो दूध कोई आपके चरणों पर तो नहीं गिरा था ना? भगवान बोले रुक्मणी जी, मेरे चरण हैं, वे राधा जी के हृदय में नित्य निवास करते हैं और उनके चरण हमारे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए वो गर्म दूध मेरे चरणों पर ही तो पड़ा, इस कारण से फफोला हो गया। रुक्मणी जी को बहुत पश्चाताप हुआ, कहा महाराज, हम ऐसा नहीं जानती थी कि ऐसी भी भक्ति होती है क्या, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। राधा जी का इतना प्रेम है, आपके चरणों को अपने हृदय में रखती है। भगवान बोले हां रुक्मणी जी, वे थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा मेरे चरण अपने हृदय में ही रखती है। वे जब भी बोलती है तो मेरे चरणों को मन में रखते हुए बोलती है, कुछ भी काम करती है तो मेरे चरणों को मन में रखते हुए करती है। ऐसे राधा जी का प्रेम बताया। एक दिन की बात है, भगवान सभी भगवान के गुण और प्रभाव की बातें करने लगी, उसी में प्रेम की भी बात करने लगी कि भगवान का किसके साथ कैसा प्रेम है। तो पटरानियों ने कहा कि अरे इस विषय में क्यों समय खराब करो, अपनों ने पहले से ही पूछ रखा है भगवान से, तो उन्होंने कहा है कि मेरे में तो राधा जी का प्रेम ज्यादा है, तो सबसे अधिक प्रेम तो राधा जी का है। उसके बाद एक सखी को दरवाजे के ऊपर फाटक पर बैठा दिया और कहा कि बाहर से किसी को मत आने देना, भगवान भी आ जाए तो उनको अंदर मत आने देना, बाहर ही रोक देना। तो भीतर में राधा रानी बैठी थी, उनकी सखियां बैठी थी, आपस में एक कहती है कि राधा जी मुझे क्या रोग लग गया, मैं उसको भुलाना चाहती हूं तो भी वो भूलता नहीं है, मैं उसको भुला नहीं सकती हूं, बहुत सोचती हूं अब इसको याद ही न करूं, मेरी तो बीमारी हो गई कि कृष्ण की याद हरदम रहती है, ऐसा लगता है कि इस कृष्ण ने मुझ पर कोई भुरकी डाल दी, कोई जादू कर दिया, मैं पागल सी हो गई। कभी कभी तो रात में एकदम उठती हूं और घूमने लग जाती हूं, पागल सी हो जाती हूं, मेरा ये पागलपन कैसे दूर हो सके? मुझे कृष्ण के मिलने के सिवा और कोई दवाई दूसरी अच्छी लगती नहीं, बस कृष्ण मिले। दूसरी सखी बोल रही है राधा जी, आप तो कृष्ण को खूब अच्छी तरह से जानती हो, कृष्ण इतने काले क्यों हो गए? तीसरी सखी कहती है ये भी कोई बात है, हम लोग अपनी आंखों में जो काजल डालती है ना, वे हमारी उन्हीं आंख उन्हीं आंखों में बसते हैं, इसलिए हमारे बार बार काजल लगाने से वो कालिमा कृष्ण में लग गई। फिर एक सखी ने कहा कि ए सखी, तुम्हारी जैसी बीमारी मेरे भी है, मैं भी उसको भुला नहीं सकती, वे रात दिन मेरे हृदय में बसते रहते हैं। तुमने तो आज बोल दिया, तब बोलने का साहस कर रही, उन्हें तो बोला ही न जाए। ऐसा क्या हो, क्या ऐसा नहीं हो जाए कि मैं कृष्ण को याद करती 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 कृष्णमय हो जाऊं? तो दूसरी सखी बोलती है, तो इसमें क्या हानि है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रात दिन कृष्ण की याद करती है और कृष्ण रात दिन तुमको याद करते हैं, तो उनका तो एक नियम भी तो है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो सखी ऐसा करो कि तुम कृष्ण बन जाओगे तो वो तुम्हारा रूप धारण करके गोपी बन जाएंगे, तो तुम्हारा प्रेम कायम रहेगा, इसके वास्ते तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये काहे की बीमारी? इस प्रकार से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इतने में ही भगवान फाटक पर आ गए। उन्हें सखियों ने कहकर रोक दिया कि हे कृष्ण, राधा रानी का हुक्म है कि भीतर कोई न आए। कृष्ण कहा कि जाओ, राधा रानी से हुक्म लेकर आओ, कह दो कि कृष्ण आए हैं, क्योंकि अब मैं रुक नहीं सकता हूं, मेरे में ताकत नहीं है। क्यों? अरे ऐसी प्रेम की बातें जहां होती हूं, मैं कैसे रुक सकता हूं? यदि तुमको हुक्म दिया तो जल्दी जाकर के पूछ के आओ। तो कहा, महाराज यदि मैं पूछने गई और पीछे से आप घुस गए तो अच्छा, आप यहीं ठहरो, मैं पूछ कर आती हूं। तो भगवान ठहर गए। भगवान ने कह दिया ऐसे नहीं जाएंगे बिना हुक्म के। ठहर गए, वो पूछने के लिए भीतर गई। तो सबने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हमारी बड़ी रहस्य की बातें हो रही हैं, जो बातें उनके बिना हम कर सकते हैं वो उनके सामने नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम की ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो प्रेमी प्रेमी की बातें एक दूसरे को खुल करके कह सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी कृष्ण को अंदर मत आने देना, जाओ कह दो, अभी थोड़ी देर रुकना है तो वहां ठहरो, ये तो और कहीं घूम जाओ। उसने आकर भगवान से निवेदन किया, विनय से कहा कि महाराज क्षमा करेंगे, अभी राधा रानी जी ने आज्ञा नहीं दी है, कहा कि अभी आपको और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे यहां अभी बड़ी रहस्य की बातें हो रही है और आपके अंदर आ जाने से सब बातें बंद हो जाएंगी। ध्यान देना, जो बातें अभी आपके बिना हम लोग आपस में खुल करके कर रहे हैं, उसमें जो आनंद है वो आपके मिलने में आनंद नहीं है। कृष्ण ने कहा कि अरे बातें बंद क्यों हो जाएंगी, यदि मैं वहां पहुंचता हूं तो और ज्यादा बातें करो, वो बातें मुझसे भी करो। तो सखी कहने लगी कि ये सब बातें मैंने उनसे पूछ लिए, तो उन्होंने कहा है कि आपके गुणों की बातें, आपके प्रभाव की बातें, आपके विषय की बातें, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपके प्रेम की बातें आपके सामने करने से लज्जा आती है, मन में संकोच होता है, वो तो आपके बिना आपके पीठ पीछे ही अच्छी लगती है। भगवान ने कहा तो संकोच नहीं करना चाहिए, जहां प्रेम हो वहां संकोच किस बात का? सखी ने जाकर कहा राधा जी से कि राधा जी, भगवान ने मुझे दोबारा भेजा है, उन्होंने कहा कि जहां प्रेम होता है वहां संकोच नहीं करना चाहिए, हमारे सम्मुख भी बातें करो तो क्या आपत्ति है। प्रेम में संकोच, भय, मान, प्रतिष्ठा ये थोड़े ही रहते हैं। मैं तुम्हारे में कहां से, तो तुम्हारे में ये संकोच, भय, मान, प्रतिष्ठा कहां से आ गई? वो फिर गई और वहां से हुक्म आया कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी भगवान को बोल दो कि वो न आए, प्रतीक्षा करें। तो भगवान ने कहकर उत्तर दिया कि हम ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां ऐसी बातें होती हैं वहां मैं रुक ही नहीं सकता हूं, मेरा स्वभाव नहीं है। फिर भगवान एक प्रकार से जबरदस्ती भीतर चले गए। उनको देखकर गोपियां मुग्ध हो गईं और उनको देखकर राधा जी चुप हो गई, सब झरझर हो गई, बोली बंद हो गई, बातें बंद हो गई। भगवान ने कहा, रे मेरे आने से तुमको लज्जा होती है, भय होता है? वे बोली नहीं तो। कि नहीं तो कैसे, मैंने तुमसे दो तीन बार हुक्म लिया तो तुमने यही कहा कि बाहर प्रतीक्षा करो, हम भगवान के सामने ऐसे नहीं बोल सकते। तो मुझे तो ऐसा ही बतलाया गया। रानियां बोली नहीं, ये तो एक हमारा विनोद था, मजाक थी। भगवान ने कहा, फिर तुम हमारे सामने क्यों नहीं करती? जो बातें तुम्हारी चल रही थी वो हमारे सामने करो। वे बोली, बहुत सी बातें आपके सामने ही किया करती हैं, कई बातें ऐसी भी तो होती हैं जो आपकी अनुपस्थिति में हमको ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। ऐसी कौन सी बात है जहां आपके ऊपर दोष लगाया जा सकता हो? करते तो आपकी प्रशंसा ही है। भगवान ने कहा, फिर तुमको भय क्यों हो गया कि आपके ऊपर कुछ हम दोष भी तो लगाती है कभी कभी? तो दोष लगाओ, दोष लगाओ, हमारे सन्मुख लगाओ, हम दोष को सुनकर नाराज नहीं होंगे, ये तुमको वचन देते हैं। हमारे में कोई कमी है तो बताओ। तो वे एक दूसरे की तरफ ताकने लग गई और कहने लगे, तुम कहो, तुम कहो। उनमें से किसी ने कहा कि महाराज, हम सब की तरफ से बोल रही हैं कि बोलो, आपके ऊपर सबसे बड़ा दोष यही है कि आप में दया नहीं है। एक प्रकार से आप हम सबको तरसाते रहते हैं, चाहे हम तरसती तरसती मर जाएं, लेकिन आपको तो दया नहीं आती। तरसाने में आपको क्या मजा आता है, इस बात को हम समझती नहीं है। इसलिए कभी कभी आपकी आपके ऊपर हम दोषारोपण भी करती हैं, इसलिए आपको बाहर रोक दिया। भगवान में नहीं नहीं नहीं, मेरी निंदा तुम मेरे सामने करो, इस बात से हमको नाराज थोड़ा ही है। इसके लिए तुमको भय नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। किस बात का भय, किस बात का संकोच? वे बोली कि जिस समय आपके गुणों की बात करते हैं तो आपके सामने गुणों का वर्णन करने में संकोच होता है, पीठ पीछे नहीं होता है। भगवान बोले, देखो सखियों, सम्मुख जो संकोच होता है यही प्रेम की कमी है। संकोच होना ही नहीं चाहिए। जहां प्रेम है वहां आदर है, सत्कार है, भय संकोच ये सब उसमें कलंक है। जहां अपना विशुद्ध प्रेम है, अनन्य प्रेम है, वहां ये सब होना ही नहीं चाहिए। प्रेम के तत्व को, रहस्य को जो समझ लेता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसके अंदर भय संकोच आदर सत्कार ये सब विदा हो जाते हैं, सारे भाव जब साधक सारे भावों से ऊपर उठ जाता है तब वहां फिर वह सब नहीं होता है। सारे भाव क्या, जैसे माधुर्य भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, शांत भाव है, ये सब वहां पर समाप्त हो जाते हैं। एक शास्त्र में बात मिलती नहीं है सर, बहुत ऊंची बात है, अपने तो बस की नहीं है। ये सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। माधुर्य भाव के भी दो रूप होते हैं, एक स्वकीय एक परकीय। माधुर्य भाव माने प्रेम भाव, अपनेपन का जो भाव होता है उसको माधुर्य भाव बोलते हैं। अपनी जो धर्म पत्नी है उसका जो माधुर्य प्रेम है वो स्वकीय है, और जो दूसरे स्त्री के साथ प्रेम है वो माधुर्य है, वो परकीय है। उसमें फर्क होता है, उसमें फर्क यह है कि अब ये बात बहुत गहरी बात बताई है कि स्वकीय भाव में अधिकार बुद्धि होती है और परकीय भाव में समर्पण की बात होती है। ये बात सारांश है। मेरे साथ विशुद्ध प्रेम होता है वहां वात्सल्य भय आदर सत्कार ये सब समाप्त हो जाता है। जैसे कोई सखी जो दासी थी वह दास भाव रखती थी तो उसके मन में स्वामी का भय हो जाता है, संकोच भी होता है। इसी प्रकार सख्य भाव किसी का रहता है उसमें कुछ न कुछ लज्जा रहती है, सब भावों से ऊपर उठता है, वहां पर ये कोई दोष नहीं रहता, ये आगे जाकर मिट जाते हैं। दास भाव बहुत ऊंचा है, सख्य भाव भी ऊंचा है। हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी में जो भाव था वह दास्य भाव था, परंतु अर्जुन का जो श्री कृष्ण में भाव था वह दास्य भाव भी था और सख्य भाव भी था। भगवान ने खुद कहा है भक्तोसि में और सखा चेति। दो बात क्यों कही कि तू मेरा भक्त भी है, तू मेरा मित्र भी है, तेरे अंदर सख्य भाव भी है, तेरे अंदर दास्य भाव भी है। भगवान ने कहा कि मैंने आपको अपना सखा ऐसे मानकर आपके साथ आसन पर, शैया पर और जो कुछ व्यवहार किया, तिरस्कार किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अर्जुन ने कहा भगवान से, तिरस्कार किया, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणये नवापि यच्चा वहा सार्थ मसत कृतोसी, तो मैं क्षमा चाहता हूं। उद्धव का भाव दास्य भाव भी था और सख्य भाव भी था। जितने गोप ग्वाले थे उन सब का सख्य भाव था, और जो गोपियां थी वे उनकी सखियां थी, इनका सख्य भाव भी था और बहुतों का माधुरी प्रेम भी था। राधा जी सब भावों से ऊपर उठी हुई थी, सारे भाव उनके अंदर समाविष्ट थे, वह खुद सारे भावों से अतीत थी। इस प्रकार से हम लोगों को भी भगवान के साथ गोपियों के समान प्रेम करना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि भाई ये तो गोपियों का प्रेम है, हमारा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं मान सकते। ऐसे ही शांत भाव है, साधन के समय द्वैत भाव और उसका फल निर्गुण निराकार ब्रह्म में पर्यवसान हो जाना, ये शांत भाव है। साधन काल में तो द्वैत और फल में सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति, निर्गुण निराकार ब्रह्म में जो भाव है वो शांत भाव है। सगुण भक्ति करते हुए जो इच्छा उस भाव की है उसका भाव शांत भाव है। इस दृष्टि से हर एक भाव से भगवान से प्रेम रखा जा सकता है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान के प्रति सब प्रेम रख सकते हैं। हम लोगों का भगवान में पवित्र भाव होना चाहिए। पवित्र भाव का अर्थ है कि भगवान से भगवान को भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए। बल्कि भगवान कुछ देना भी चाहे तो मना करना चाहिए। इस मना करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। हम तो यहां तक कहते हैं कि भगवान से मिलने की भी इच्छा मत करो और भगवान में लगे जाओ, भगवान में प्रेम करो। और रहस्य की बात बताई जाती है कि मिलने की इच्छा न रखने पर आप जो प्रेम बढ़ाओगे उससे भगवान मिले बिना रह नहीं सकते। जब राधा जी और सखियों ने भगवान को भी न आने के लिए मना कर दिया तो भगवान जबरदस्ती घुस गए। कितनी उच्च कोटि की बात है। मिलने की इच्छा न रखने पर भगवान शीघ्र आते हैं, तो भगवान से शीघ्र मिलने के उद्देश्य से मिलने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और इससे भी ज्यादा रहस्य की बात बताई जाती है कि जैसे भगवान मुझे तरसाते हैं, आहा, वैसे मैं भी भगवान को तरसाऊं। उसे मेरी गर्ज नहीं है, उनके मन में मेरी गर्ज पैदा कर दूं। मेरे लिए भगवान की गर्ज नहीं, उनके मन में मैं गर्ज पैदा कर दूं। गर्ज होते हुए भी यह कहना कि मुझे गर्ज नहीं है, ऐसा भगवान के साथ विनोद पूर्ण संबंध रखो तो भगवान का तरसाना और भी महत्व की चीज हो जाती है। अपनी एक उदाहरण दिया है, उदाहरण तक ही समझना है। अपनी धर्म पत्नी के साथ पति का जो प्रेम होता है और धर्म पत्नी इस बात को समझ जाती है कि मेरे बिना मेरे पति नहीं, हाँ मेरे बिना मेरे पति का कुछ अस्तित्व ही नहीं मानते, तो उसकी इच्छा रहते हुए भी उसके पति को तरसाती रहती है। ये विद्या भगवान में लगाओ, फिर भगवान को बुलाना न पड़े, वो खुद आकर खुशामद करे। प्रेम का तत्व जितना भगवान जानते उतना हम लोग नहीं जानते। साधक जो है वो इतना प्रेम का तत्व है नहीं जानता। प्रेम का तत्व जितना साध्य जानता है, साध्य माने भगवान। साधक तो प्रेमी है और साध्य है वो प्रेमास्पद है। तो प्रेमास्पद भगवान प्रेम के तत्व को जितना जानते हैं उतना भक्त क्या जानेगा। तो ये रहस्यमय बातें भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान खुशामद करते हैं। और जब भगवान भक्त की खुशामद करते हैं उसमें भगवान को मजा आता है। खुशामद कराने वाले को भी आता है, पर भगवान खुशामद करे या करावे, दोनों में ही भगवान को मजा आता है। ये प्रेम का ऐसा ही मार्ग है। प्रेम मार्ग में जहां विशुद्ध प्रेम होता है वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए वहां एक दूसरे को शर्म नहीं आती। वहां आदर सत्कार भी नहीं है, वहां बड़ा छोटा भी नहीं है, वहां एक केवल प्रेम ही प्रेम रहता है। जहां आदर सत्कार भय संकोच आदि होता है ये तो प्रेम में उच्च प्रेम में कलंक है। प्रेमी का तो एक ही उद्देश्य रहता है कि भगवान को आह्लादित करें, भगवान को हम अपने चरित्र से मुग्ध करें। और भगवान का उद्देश्य होता है कि भक्त को हम आह्लादित करें और मुग्ध और उसको आनंदित करें। तो भगवान की सारी क्रिया भक्त के लिए होती है और भक्त की सारी क्रिया भगवान के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। भगवान की दृष्टि में जो भगवान का भक्त है वह प्रेमास्पद है, माने भगवान के लिए वो भगवान हो गया। और भगवान प्रेमी तथा भक्त की दृष्टि में भक्त प्रेमी और भगवान प्रेमास्पद है। दोनों में दोनों का प्रेम का नाता है। भगवान से पूछा जाए कि आपका प्रेमास्पद कौन है, तो कहते हैं मेरा भक्त है। और भक्त को कहा जाए कि आपका प्रेमास्पद कौन है, प्रेमास्पद माने आपसे प्रेम करने वाला, तो भक्त कहता है कि भगवान है। भगवान कहते हैं कि भक्त है। अब हम क्या निर्णय करें कि कौन प्रेमास्पद है? जैसे ज्ञान के मार्ग में एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसे ही प्रेम के मार्ग में एक प्रेम ही है, दूसरा कोई नहीं है। यहां जो प्रेम, प्रेमास्पद, प्रेमी, ये तीनों ही चेतन होते हैं। साधन काल में जो प्रेम होता है वो तो जड़ है। यह जो प्रेम है वह चेतन है, जहां परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो एक प्रेमावस्था बनती है वो अवस्थाओं से अलग है। साधन काल का जो प्रेम होता है वो तो असली प्रेम का एक प्रतिबिंब होता है। जैसे असली चंद्रमा है वो तो आकाश में है, उसका चिल्का पड़ता है वो पानी में पड़ता है, तो पानी वाला प्रतिबिंब है, असली तो आकाश में है। ऐसे ही जो ये प्रेम है, साधन काल का जो प्रेम है वो जड़ है। और भगवान के अंदर जब ये प्रेमास्पद का भाव आए, भगवान ही प्रेमास्पद है, तो वो प्रेम चेतन है। संसार में जो परस्पर स्त्री पुरुष का प्रेम है, ये प्रेम है ही नहीं, ये तो मोह है, ये कामना है, इसको कभी भी भगवान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। किंतु भगवत विषयक जो प्रेम है वह प्रेम उस असली प्रेम का प्रतिबिंब मात्र है। ज्ञानी महात्माओं के हृदय में निर्गुण निराकार का ब्रह्म का स्वरूप प्रतिबिंब ही आता है। वे तो समा नहीं सकते, और अंतःकरण बुद्धि है वह अल्प है, इस बुद्धि के अंतर्गत वो निर्गुण निराकार ब्रह्म आ ही कैसे सकता है? उस पर तो केवल थोड़ा चिदाभास होता है, प्रतिबिंब भी होता है। इस प्रकार से संसार में साधन काल में जो साधक है उसके हृदय में जो अनंत अनन्य समीपता है वो ही प्रेम है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः है। चार प्रकार के भक्त गीता में बताए हैं, सातवें अध्याय के 16वें श्लोक में, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। उन चारों के बीच में जो ज्ञानी होता है वो निष्काम भक्त है, अनन्य भक्ति से युक्त है, उन सब में वो श्रेष्ठ है। उस ज्ञानी को मैं बहुत प्यारा हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यारा है, ऐसा भगवान खुद बोलते हैं। इसलिए भगवान अपने प्रेमियों के हृदय में नित्य निवास करते हैं, उनका हृदय कभी प्रेम से खाली होता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इतनी देर तो भगवान में प्रेम हो गया, अब हम संसार में प्रेम हो गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान की जो सारी चेष्टा है वो भक्त के लिए, और भक्त की सारी चेष्टा भगवान को खुश करने के लिए है। तो इस प्रकार से ये दोनों की लीला है, वह भगवान की लीला है, ये भक्त की लीला है। नारायण नारायण।